आज हम आपको मोबाइल वाणी न्यूज मीडिया चैनल में स्वागत है सभी लोगों का। और आज हम अपने समाज सेवी अमन सुल्तान जी हैं, जो पटना के भी समाज सेवी हैं और इनका पैतृक गांव हाजीपुर वैशाली ही पड़ता है, जहां इन्होंने बहुत सारे काम को अंजाम दिया है। पिछले साल लॉकडाउन में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। इस बार के लॉकडाउन में क्या सरकार की नजरिया है और सरकार क्या चाह रही है, इस पर हम इनसे रूबरू होंगे। अमन सुल्तान जी, आपके इस वॉइस मीडिया चैनल में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इस बार की जो कोरोना वैश्विक महामारी का दूसरा स्टेज जो हम लोग अभी देख रहे हैं, भारत ही नहीं पूरे राज्य, भारत के जो पूरे राज्य में है उसमें खास करके बिहार का जो हालत है और नजरिया देखा जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जब पिछली बार यह महामारी आई थी उस समय जो ये डर था लोगों के अंदर उतना ज्यादा व्यापक नहीं था, लेकिन हमारे पास एक साल मिला सरकार को और एक साल में सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे जो दूसरी जो लहर है उससे जो परेशानी हो रही है, खास करके मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। हमारे पास अस्पताल में बिस्तर की कमी है, ICU की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। एक साल में सरकार ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता आज ये भयावहता नहीं होती। कहीं ना कहीं बीमार बहुत लोग पड़ रहे हैं, उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है सरकार के पास जिनसे उन्हें बचाया जाए। एक साल के दौरान सरकार ने इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया।
तो हमारा दूसरा ये सवाल है, बीच में जो प्रवासी मजदूर बाहर चले गए उनको सरकार बुला करके क्या जताना चाह रही है, क्या सरकार की मंशा है? कि अगर हम माने तो प्रवासी मजदूर अगर जो गए कि इनकम करने के लिए, कमाने के लिए, जो परिवार चलाने के लिए, फिर वो रिटर्निंग जब आएंगे तो उनके क्या, पहले तो मनरेगा के तहत काम मिल रहा था, लेकिन अब वो भी क्या लगता है ऐसे स्थिति में क्या होगा समाज का या उनके परिवार का?
पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी बिहारियों को कितना तकलीफ सहना पड़ा था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दर दर भटक रहे थे, एक टाइम के भोजन के लिए वो भटक रहे थे। तो फिर उन्होंने जब रास्ता खुला किसी तरह से वो पैदल घर आए, वो ट्रेन से आया, और इस बार भी वही हालत बन रहा है। सरकार जो है इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जब चुनाव का समय था तो सरकार ने कहा था कि हम प्रवासियों को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इन सब के अभाव में, रोजगार के अभाव में वो बिहार से बाहर गए और आज हालत है कि फिर उन्हें वही डर सता रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन ना आ जाए कि हमें रोटी रोटी के लिए फिर तरसना पड़े, घर वापस आना पड़े। सरकार एक साल में कुछ किया ही नहीं अगर हम देखें तो इन सब चीजों पर।
तो ऐसे स्थिति में हम बहुत एक मामूला इंतजाम अगर पूछें तो किस टाइप के लोगों को इस तरह की महामारी झेलना पड़ रहा है? अगर कोरोना है तो क्या अमीर ज्यादा लोगों के लिए है या गरीब लोगों के लिए है या बीच वाले लोगों के लिए है, जो सब चीज से, मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ तो हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा इंतजाम है, अगर मानूँ तो आंगनबाड़ी केंद्र पे किस तरह के इंतजाम है, क्या सरकार वैसे गरीब लोगों को किस तरह के इंतजाम मुहैया करा रहे हैं अभी कोरोना के समय? तो इन सब इन बिंदुओं पर क्या आपका, मतलब ये अपने समाज से, हाँ, वैशाली जिला से जोड़ते हुए या पटना जिला के, या आपने जहाँ जहाँ गया उन सभी चीजें जिलों के बारे में हमारे श्रोता को बताएं।
जी देखिए, जब भी कोई परेशानी होती है तो सबसे ज्यादा परेशान जो गरीब होता है और मध्यम वर्ग का परिवार होता है। अमीर तो किसी तरह से जी लेते हैं, किसी तरह से गुजारा कर लेते हैं, अस्पताल के बिस्तरों का इंतजाम कर लेते हैं अपने पैसों के वजह से, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? अगर बीमार पड़ेगा तो आज उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए न पैसा है और घर में रहेगा तो न खाने के लिए उसके पास दो रोटी होगी। तो सबसे ज्यादा परेशान तो गरीब है और मध्यम वर्ग है। कहीं ना कहीं कितने लोगों का रोजगार चला गया है और इस बार न जाने कितने लोगों का चला जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान तो गरीब है और मध्यम वर्ग के ही लोग हैं, तो बीमारी से भी परेशान है और रोजी रोटी से भी परेशान है।
आपको इस पे किस तरह की आप सलाह देना चाहेंगे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या जिनको आंगनबाड़ी केंद्र से सुविधा नहीं मिल रहा है या हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सरकार को सबसे पहले आर्थिक पैकेज का एक घोषणा करना चाहिए जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए हो, जिससे उनमें ये डर कम से कम खत्म हो कि वो घर में रहकर खा पी लें, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तभी उनकी रोजी रोटी चलेगी और घर से बाहर तो बीमारी है। सरकार को इस आर्थिक पैकेज पे बहुत जोर देना पड़ेगा इस समय, हर समाज के हर तबके के लोगों को, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक पैकेज देना बहुत जरूरी है अभी के समय में।
तो कहीं ना कहीं एक चीज और मेरा सवाल है, एक जगह पे उठ रहा है कि कोरोना के डर से लोग मध्यम वर्ग या गरीब तबके के लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाना छोड़ दिए हैं, क्या इस तरह के सिचुएशन पैदा हो रहे हैं क्या?
जी बिल्कुल पैदा हो रहा है। पटना की बात करें तो आपको 1000 रुपए की दवाई जो है वो 10,000-15,000 में मिल रहा है, 2-3 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 10,000-12,000 रुपए मांग कर रहा है। तो ऐसे में गरीब परिवार कहाँ से दे पाएगा इन सब चीजों का वो पैसा कहाँ से चुका पाएगा?
तो ये
इंजेक्शन जिसका दाम 1000 रुपया है उसे 10,000-12,000 में मांग लिया जा रहा है पैसा। पटना का ये है, ये सब इंसिडेंट लोगों का फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ। 1000 रुपए के इंजेक्शन का 10,000 मांग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का लोग 40,000-50,000 मांग रहे हैं। तो गरीब कहाँ से इन सब चीजों का उपाय कर पाएगा?
तो एक चीज तो ऐसा तो नहीं लोगों में, गरीब वाले या जो भी लोग हैं, इंजेक्शन से भी बहुत सारे फर्क पड़ रहे हैं कोरोना
इंजेक्शन वैक्सीन?
जी कोरोना वैक्सीन से भी तो बहुत सारे लोगों को लोग कह रहे हैं कि नहीं कोरोना वैक्सीन से मौत हो रही है।
नहीं नहीं ऐसा वैक्सीन नहीं है। मैं कई डॉक्टरों से बातचीत किया है मैंने, उन्होंने बोला है कि वैक्सीन लेना ही इस बीमारी का जो है वो अस्थायी समाधान है। अगर आप दोनों डोज का वैक्सीन लेंगे तभी आप सेफ हैं। वो कोई भी वैक्सीन लेने पर तत्काल रूप से थोड़ा बुखार उखार आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग वैक्सीन लेने की वजह से मर रहे हैं। ये मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ।
तो अमन सुल्तान जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने वॉइस मीडिया श्रोता के माध्यम से सभी श्रोता को ये जानकारी दे दूं कि डोज ये इंजेक्शन कहीं न कहीं हम सब लोगों को फायदे के लिए है, और ये दो डोज लेना बहुत ही जरूरी है। और अभी जो कोरोना है इसमें मोबाइल वाणी का यह आह्वान है कि आप लोग घर पे स्टे रहें, जिस तरह से हो जैसे भी हो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और सामाजिक दूरी बना करके रखें ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।